Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। तपस्या पे बहुत ही गहन चर्चा हो रही है और तपस्या क्या है वास्तव में केवल अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जिस क्षेत्र में भी आप हैं, यदि अपने कार्य को बहुत डूब के तल्लीनता से लगन के साथ करते हैं, वो भी एक प्रकार का तप है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक तप है वो उस तप में हमें मदद करता है, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है, कहीं ना कहीं हम अशांत हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम बेचैन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं असफलता हमसे दूर भाग रही होती है। ऐसे में ये जो आध्यात्म का तप है, साधना है, वो हमें मदद करता है अपनी वहाँ की कार्य क्षमता को बढ़ाने में, वहाँ की एकाग्रता को दृढ़ करने में। इसीलिए हम विशेष करके तपस्या पे लगातार भ्राता जी के साथ चर्चा कर रहे हैं, ताकि जो आध्यात्म के पथ पे चलने वाले साधक हैं उन्हें भी इसमें मदद मिले, और जो गृहस्थ में रहने वाले हैं वो भी साधना करके, तपस्या करके, योग करके अपने कार्य क्षेत्र में सफल हों। आइए भ्राता जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
भ्राता जी, कल भी हमारी विशेष चर्चा हो रही थी तपस्या पे, कि कैसे हम साधना करें, तप करें। तो एक विशेष बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि तपस्या के लिए जो एक दिनचर्या होनी चाहिए जो साधक हैं उनके लिए, या जो बाहर कार्य कर रहे हमारे भाई बहन उनके लिए, अपनी दिनचर्या में कैसे इसका समावेश किया जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आप कह रहे थे, विद्यार्थियों की भी एक तपस्या है
जी,
एक विशेष लक्ष्य को पाना, अच्छी स्टडी करना। एक वैज्ञानिक भी एक तपस्वी है, अपने कार्य में पूरा तल्लीन और उसको सफल करने की दृढ़ आकांक्षा। इन सब पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है हमारी ये राजयोग की तपस्या, क्योंकि इससे इनर पावर बहुत बढ़ जाती है, मन की शक्तियां बढ़ जाती हैं, बौद्धिक विकास हो जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, विशेष मैं कहूँगा विद्यार्थी और वैज्ञानिकों के लिए, वैसे सबके लिए वो बात है। तो राजयोग की तपस्या से बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, उसकी शक्ति तो बढ़ती है, उसकी डिविनिटी बढ़ती है, लेकिन वो क्लीन बहुत होती है, वो रिफाइन होने लगती है। तो एक बहुत सुंदर रहस्य ये है, मनुष्य के ब्रेन में अनंत ज्ञान भरा रहता है, जन्म जन्म का ज्ञान, उसका सबकॉन्शियस माइंड दूसरे लोगों से जुड़ा रहता है, दूसरे लोगों के वाइब्रेशन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ये सब हरेक के ब्रेन में समाहित है। जब राजयोग की तपस्या की जाती है तो उसके ऊपर जो लेयर आ गई हैं वो हट जाती हैं, वो इमर्ज होने लगता है, और एक वैज्ञानिक अपने कार्य में बहुत जल्दी सफल हो सकता है, उसके मन में नए नए थॉट्स आएंगे, एक विद्यार्थी की स्मरण शक्ति बढ़ेगी, उसका बौद्धिक विकास होगा, उसे मेहनत कम करनी पड़ेगी और एक बार वो पढ़ेगा और सब कुछ उसे याद होने लगेगा। तो ये तपस्या सचमुच बहुत सुंदर है। रही बात इसकी दिनचर्या की, आजकल क्या हो गया है लोगों को कि देर तक सोते हैं। एक युवक आज ही आया तो बोलने लगा कि मेरी कुछ मानसिक समस्याएं चल रही हैं, मन बहुत विचलित रहता है, बहुत दौड़ता है। मैंने उससे पूछा कितने बजे सो के उठते हो। 10-11 बजे तक उठ जाता हूँ। मैंने कहा 10-11 बजे सो के उठना, भाई क्यों, सोते कितने बजे हो? कहा 11 बजे सो जाता हूँ। तो मैंने कहा 12 घंटे नींद की ज़रूरत है तुम्हें, इससे तो बुद्धि डल होने लगेगी, बुद्धि का विकास रुक जाएगा, क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा नींद वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वप्न भरी नींद होगी, बुद्धि को डल करेगी। जो लोग बहुत सोते हैं या जो बिल्कुल नहीं सोते, उनकी बुद्धि की शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर मैंने उसे किसी भी तरह तैयार किया, भाई 6 बजे तक तो उठ जाया करो, 7 घंटे नींद तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी, चलो ज़रूरत पड़े 1 घंटा खाना खा के दिन में रेस्ट कर लेना। दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा सवेरे जल्दी उठें, टाइम पर सो जाएं, 10:30 तक सो जाएं तो बहुत अच्छा, 10 सोएं तो और भी अच्छा, भोजन भी थोड़ा जल्दी करें, 8 बजे 7 बजे, और अगर एक योग युक्त आत्मा दो बार ही भोजन करे जैसे सवेरे 11 बजे के आसपास कर लिया और शाम को 6 के आसपास कर लिया। सवेरे यदि ज़रूरत हो कोई हल्की चीज़, फ्रूट्स या और कुछ स्प्राउटेड चीज़ें ले ली, तो उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और ये जो अन्न है उसके तन को और मन को भारी नहीं करेगा। एक तो इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, भोजन भी लाइट हो, और फिर सवेरे जल्दी उठें। अगर 4 बजे उठकर बहुत अच्छी योग साधना की जाए तो इससे टोटल जीवन में विकास होने लगता है, क्योंकि अमृत वेले मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है, जागृत रहता है। वो करता तो दिन में भी है जब मन शांत होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय में, जिसका बड़ा भारी महत्व है, प्रकृति के वातावरण शांत होने के कारण सभी लोग सोए हैं तो वातावरण में निर्मलता है, बहुत ज़्यादा नीरवता है, तो इससे बहुत अच्छा अनुभव होगा। मानसिक शक्तियाँ बढ़ेंगी, बौद्धिक शक्तियाँ बढ़ेंगी, मनुष्य अच्छा चिंतन कर सकता है, वो अच्छी स्टडी कर ले उस टाइम थोड़ी भी।
आम जो व्यक्ति है उसे लगता है कि इतनी सुबह उठ करके करना क्या है, तो वो शायद उस चीज़ में करना क्या है वाली बात में शायद उलझ के रह जाता है और इसीलिए शायद बहुत देर तक सोता है।
इसलिए ऐसे लोग जिनके पास करने को कुछ नहीं है, है तो सही पर वो जानते नहीं है, उन्हें 6 बजे से पहले पहले अवश्य उठ जाना चाहिए,
सूर्योदय से पहले,
ताकि थोड़ा सा अपने चिंतन के लिए सुंदर समय मिले। इसमें बात स्वयं से बात करने की है, अच्छे विचार क्रिएट करने की है, और उन्हें भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन सीख लेना चाहिए, कुछ सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, जहाँ उनका फेथ है, जिस तरह की स्टडी उनकी है अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक, उसका वो थोड़ा अध्ययन करें। कई लोग गीता पाठ करते हैं वो सवेरे उठ के कर लें, मुकाबले बस इसके कि वो नहा धो के 8 बजे करें, इससे अच्छा है वो 6 से पहले करें, तो वो चीज केवल पाठ नहीं रह जाएगी, उनके हृदय में समाने लगेगी।
लेकिन एक ऐसी मान्यता भी तो है व्रता जी कि ये सारी चीजें स्नान ध्यान करके करना चाहिए, क्योंकि गीता है या हमारी पवित्र ग्रंथ है, उन्हें हमें शुद्ध होके ही स्पर्श करना चाहिए। हाँ, उससे पहले नहीं करना,
शुद्ध अवश्य होना चाहिए, लेकिन वो काम जल्दी भी किया जा सकता है। और अगर किसी को शौच आदि नहीं जाना है तो वो ऐसे ही स्नान करके सवेरे ही अच्छे माहौल में इनका अध्ययन करे, तो उसे उनका ज्यादा फायदा होगा। शौच आदि जाना है तो स्नान करे और फ्रेश होकर फिर करे, नहीं जाना है तो हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा घूम फिर कर, यानी थोड़ा चुस्त होकर फिर अध्ययन किया जा सकता है। तो वास्तव में स्वच्छता तो मन की स्वच्छता की बात है, तन की स्वच्छता की बात यहाँ लोगों ने इसलिए की थी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, जो लोग वासनाओं में डूबे रहते हैं, जिनकी रात गंदगी में गुजरती है, उनको ये भाई ये स्वच्छता करने को कहा जाता है। लेकिन जिन लोगों ने पवित्रता अपना ली है वो तो स्वच्छ हैं ही, वो वैसे ही स्नान कर लें या हाथ मुंह धो के थोड़ा फ्रेश होकर फिर अध्ययन करें।
जी जी जी, तो एक रही भ्राता जी की सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं और रात को थोड़ा जल्दी सोने की आदत डालें, अपनी दिनचर्या में इस चीज को शामिल करें। इसके अलावा सारे दिन में किस प्रकार से इस साधना और तपस्या को शामिल किया जाए?
कि हमारे यहाँ तो ये किया जाता है, आजकल तो बहुत सुंदर एक प्रावधान है कि प्रति घंटे के एंड में 1 मिनट के लिए एक सुंदर ट्यून बजती है, एक छोटा सा गीत, 1 मिनट में दोनों काम पूरे हो जाते हैं और सभी लोग जहाँ भी जो हैं, जिस कार्य में भी वो लगे हुए हैं, एक अच्छी साधना कर लेते हैं। 1 मिनट भी मन को शांत करके परमात्मा शिव के ध्यान में, या मैं आत्मा हूँ इस स्थिति में, या कि सुंदर चिंतन में वो समय व्यतीत करते हैं। फिर 6-7 बार 3-3 मिनट के गीत बजते हैं, उसमें भी सब बहुत अच्छी योग साधना करते हैं। ऐसे ही गृहस्थ में रहने वाला हर व्यक्ति, जॉब में रहने वाला हर व्यक्ति, अपने कार्य को बीच में थोड़ा थोड़ा रोक कर 1-1 मिनट भी अच्छी साधना करेंगे, कुछ अच्छा चिंतन, तो उनकी कार्य शक्ति बढ़ेगी, ब्रेन की शक्ति बढ़ेगी। मान लो एक व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर रहा है
जी।
वो 4 घंटे काम करके थक गया है, लेकिन उसे काम करते रहना है, तो अगर वो काम को कंटिन्यू करता है, यहाँ बीच में वो रेस्ट नहीं देता माइंड को, तो उसके हेल्थ पर भी बुरा असर होगा, बुद्धि और मन पर भी बुरा असर होगा। इसलिए कितना अच्छा हो वो 5 मिनट अपने को रिलैक्स कर ले, कुछ नहीं होता तो थोड़ा बाहर घूम आए, शांत में बैठ जाए, अपने कंप्यूटर में ही कुछ ऐसी चीज़ भर के रखे जो स्क्रीन पर आ जाए और वो देख ले, उन चीज़ों से हट के जो कार्य वो पहले कर रहा था, मन एकदम आनंदित हो, प्रसन्न हो, किसी साधना में लग जाए। ये 5 मिनट का रेस्ट उसको आधे घंटे की मदद कर देगा, कभी कभी तो 1 घंटे की मदद कर देगा, क्योंकि थकावट में जो कार्य वो करता उसमें गलती होती, वो इरिटेट होता, उन सब से वो बच जाएगा। तो हम ये चाहते हैं और ये बहुत सुंदर एक सजेशन है कि हर व्यक्ति बीच बीच में 3 मिनट ब्रेक ले कार्य से
जी।
अपने को फ्रेश करे, शांत करे चित्त को। ऐसी साधना करने के बाद उसकी कार्य शक्ति बढ़ेगी और वो एक चीज पाएगा कि जब वो काम करके घर लौटता है तो वो थका हुआ नहीं है, वो टेंस नहीं है, वो बहुत फ्रेश है, जैसे कि उसने आज कुछ किया ही नहीं है, और उसकी एफिशिएंसी, उसकी बौद्धिक क्षमता बिल्कुल वैसी ही बरकरार रहेगी। घर लौटेगा तो ऐसे नहीं भाई अब बुद्धि बहुत थक गई है मुझे रिलैक्स चाहिए, वो रिलैक्स ही होगा। ऐसी दिनचर्या अपनाने से दिनचर्या में, जीवन में, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी।
कई बार पता है जैसे आपने कहा कि बीच में 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट का हम ब्रेक लें। कल मेरी चर्चा हो रही थी किसी से, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि ओपरा विनफ्रे बहुत फेमस हैं, उन्होंने भी अपने ऑफिस में 2 समय ऐसा सेट करके रखा है कि 2 बार सभी 5-5 मिनट का ब्रेक जरूर लेंगे और उस समय मेडिटेशन करेंगे। पश्चिम के देश की हैं वो, तो बाहर भी शायद इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है, लेकिन शायद हमारे यहाँ थोड़ा प्रचलन अभी इसका नहीं।
हमारे यहाँ भी लोगों ने कराया है, हमारे यहाँ बीके भाई बहनों के जो स्कूल्स हैं उन्होंने उनमें भी कराया है। मैंने एक जगह देखा वहाँ हर घंटे की शुरुआत में, पीरियड की शुरुआत में गीत बजता था 3 मिनट, सब बच्चे शांत में बैठे थे। मैं भी गया था, मेरे सामने भी 1-2 बार बज गया तो देखा सब बच्चे शांत में बैठे, अगर कोई बाहर घूम रहे तो वो भी खड़े हो गए। जरूरत इस चीज की होती है कि जब उन्होंने ब्रेक ले लिया तब वो फिर वो काम का ही ना सोचते रहें जो उन्होंने छोड़ा है, अगर वो वही सोचते रहेंगे तो उनका ब्रेक हुआ ही नहीं।
तो ये ज्यादातर व्रता जी इसी भी मैं आने वाला था, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि जो कार्यों का प्रभाव है उस समय यदि हमने 3 मिनट का ब्रेक लिया 5 मिनट का तो उसका ही प्रवाह जो है वो चलता रहता है, तो जिस कार्य के लिए अर्थात मेडिटेशन करने के लिए हमने वो ब्रेक लिया है वो कार्य तो सफल होता नहीं। तो
इसमें
ऐसे क्या करें?
इसमें उन्हें ट्रेंड करना पड़ेगा। अभी उसने ये तो कर दिया कि ब्रेक लो, लेकिन उस ब्रेक के समय क्या सोचो, क्या तुम्हारा चिंतन हो, किस तरह मेडिटेशन करे, ये भी अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और अगर उनके पास ऐसी नॉलेज हो कि 6 दिन अगर काम करना है वीक में तो 6 दिन के लिए प्रतिदिन एक अभ्यास कि आज जब ब्रेक लेंगे तो हम इस पर ध्यान एकाग्र करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, और उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया जाए कि जो तुम कार्य कर रहे हो बस उसको स्टॉप करना, उसका चिंतन नहीं, क्योंकि ब्रेक का अर्थ ही ये है कि हम ब्रेन की एनर्जी को रिगेन करें, तो उस चिंतन को आप शांत करना, दोबारा जब वो आपका चिंतन प्रारंभ होगा तो कहीं सहज और कहीं सफल ज्यादा होगा, ये आपको अनुभव होगा। तो एक थीम दी जाए, एक मेडिटेशन का कुछ संकल्प दिया जाए सुंदर, और तब ब्रेक दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ कई लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों में, अपने स्कूल्स में ये कराए हैं, और ये कराने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है।
बिल्कुल, मतलब कोई ट्यून हो या कोई कमेंट्री हो या कोई थॉट हो जैसे आप कह रहे हैं, इनके साथ ही यदि मेडिटेशन हो तो ज्यादा सफल होगा, अन्यथा
नहीं। मैं यही कह रहा था कि एक अच्छा गीत क्यों ना बजा दिया जाए जो सबको प्रिय हो, तो उसके शब्दों पर लोग फोकस कर देंगे और जो पिछला चिंतन है वो फट से ब्रेक हो जाएगा। तो बहुत अच्छा रहे कि ऐसी व्यवस्था हमने कई हॉस्पिटल्स में कराई हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे नर्सिंग होम ऐसे हैं जिनके डॉक्टर्स ब्रह्मा कुमार या कुमारियाँ हैं, उन्होंने अपने नर्सिंग होम में ये बहुत अच्छा कराया कि बीच बीच में कुछ सीढ़ी चलती रहती हैं पेशेंट्स के लिए जो तैयार की गई हैं, ताकि पेशेंट बहुत प्रसन्न रहे। अब वहाँ तो लोग रहते ही हैं, समझो 50 लोग एक साथ हैं वहाँ, उनके रिलेटिव भी हैं, तो वो सुन रहे हैं, बीमारी से मन निराश है, उदास है, थोड़ी निगेटिविटी आ गई है, तो ऐसी वो कैसेट हैं, सीढ़ी हैं कि उनको अच्छे थॉट्स मिले, तो वो वहाँ सुन के ही आनंदित रहें कि हम तो ठीक होने वाले हैं, अरे अब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये तो बहुत छोटी सी बीमारी है, इसमें निराशा की कोई ज़रूरत नहीं, तो उनका मन प्रसन्न होता है। ऐसे ही अगर बीच बीच में एक प्रोग्राम बना दिया जाए तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा, और इसमें कोई ये ना सोचे कि हमारे काम में बाधा पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है, इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, मान लो सर्जरी हो रही है, अब उसको तो रोक नहीं सकते, वहाँ रोकने की जरूरत नहीं, उनको चाहिए बस 5 सेकंड ब्रेक ले लें और जस्ट चित्त को शांत करके फिर कार्य करने लगें। और अगर ऐसी स्थिति है कि 2-3 मिनट ब्रेक लिया जा सकता है तो लें, अन्यथा इसको कोई कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, जैसा सहज हो वैसा करें तो कार्य शक्ति बहुत बढ़ेगी।
बिल्कुल प्रति जी, कई ऐसे समय होते हैं दिनचर्या की बात चल रही है तो, जैसे व्यक्ति ट्रैवलिंग कर रहा है उसमें उसको आधे घंटे एक घंटे लगते हैं, या वो भोजन करता है सुबह दोपहर शाम को, तो ये एक ऐसे समय होते हैं जबकि सहज रूप से शायद अच्छी साधना की जा सकती है या अच्छा मेडिटेशन किया जा सकता है। इस पे थोड़ा प्रकाश चाहूंगा आपसे।
ये तो सबसे अच्छी बात है और यही सबको सीखनी और सिखानी है, विशेषकर यात्राओं में।
जी,
मैं लाइट हाउस हूँ, मुझसे चार ओर प्रकाश फैल रहा है। मान लो बाइक पर कोई जा रहा है और उसे आधा घंटा चलना है, तो वो एंजॉय करे अपनी यात्रा को। होता क्या है, जल्दी जाना है, अब तेज चलाना है, तेज चलाने में टेंशन रहती है, ध्यान पूरा ड्राइविंग पर देना पड़ता है, इसको छोड़ दें। आधा घंटा जाना है, मन बना ले, ठीक है 35 मिनट में जाएंगे ना, कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं सुंदर विचारों के साथ। मैं आत्मा हूँ, ये भी मेरा बॉडी भी व्हीकल है, मैं डबल व्हीकल पर सवार हूँ, देह पर भी सवार हूँ और बाइक पर भी सवार हूँ। ओहो देखो ये संसार कितना सुंदर है, ऊपर से परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, और एंजॉय करें यात्रा को।
जी जी,
तो इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। भोजन बनाते और खाते, ऐसे बहुत सारे काम हैं, हम स्नान कर रहे हैं, हमें कोई काम नहीं है। कई लोग तो आधा घंटा लगाते हैं, कई एक घंटा भी लगा देते हैं, पता नहीं बाथरूम में अखबार पढ़ने लगते हैं, भूल जाते हैं कि मैं बाथरूम में हूँ, बाहर भी आना है क्या। तो ये टाइम भी हम एंजॉय करें।
जी नहीं, वो शायद एंजॉय करते हैं घंटे
वो एंजॉय नहीं करते, कहीं और बिजी हो जाते हैं। तो इसकी बहुत जरूरत है। भोजन खा रहे हैं
जी,
पहले ही मन बना ले बहुत प्रसन्नचित होकर, दूसरे प्रभाव से मुक्त रह के हमें भोजन करना है, परमात्मा की याद में करना है, अच्छे चिंतन में करना है। परमात्मा की याद करती है नहीं कि हम सीरियस हो जाएंगे। कई लोग सीरियस हो जाते हैं भगवान को याद करना पे, चुप हो जाओ, बोलना नहीं कोई भी, डीप साइलेंस, वो एक वातावरण सीरियस जैसा हो जाता। अरे नहीं, शिव बाबा को बुलाओ, हे खुदा दोस्त आ जाओ हमारे साथ भोजन करो, यू आर माई गुड फ्रेंड, चलो हम दोनों भोजन करेंगे। पूछते रहो, अच्छा तो लग रहा है ना आज भोजन, मजेदार है या नहीं, या ऐसे ही आ गए भोजन खाने के लिए, अच्छा बना या नहीं बना, मजा आया, बहुत अच्छा, तुम्हारे भंडारे से हम भोजन कर रहे हैं, ये सब तुमने ही तो हमें दिया है, वहा हमारा भाग्य, हम खुदा दोस्त के साथ भोजन कर रहे हैं। इस तरह की चिंतन करते हुए, अपने खुदा दोस्त से बात करते हुए भोजन करेंगे तो माहौल में आनंद के वाइब्रेशंस होंगे, और ये आनंद हमारे भोजन को भी सहज पचाएगा, हमारे ब्रेन को बहुत एनर्जेटिक करेगा। इस तरह कुछ अच्छे अच्छे अभ्यास करके ऐसे कार्यों को एंजॉय करना चाहिए जिसमें हमें कुछ बुद्धि ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती है। परंतु हो यही जाता है आजकल, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, मनुष्य पर कुछ विचार हावी रहते हैं। अब सवेरे ही कुछ हो गया है, आज पत्नी ने थोड़ी कहा सुनी कर दी है, तो मुझे याद आ गया एक हंसी की बात, किसी ने पूछा अपने फ्रेंड से, क्या बात है आज कुछ मन अच्छा सा नहीं लग रहा तुम्हारा, कह रहे क्या करो यार पत्नी से कहा सुनी हो गई थी। कहा तो नहीं होगा, सुनी सुनी होगी बस, हाँ यही हुआ है, सुनना ही पड़ता है भाई। तो अब वो जो छाया रहेगा मन पे, वो हर कर्म में, चाहे वो स्नान करे, चाहे वो भोजन करे, चाहे वो कार में बैठ के जा रहा हो शांति में, वही छाया रहेगा। तो अगर मनुष्य सीख ले कि कोई भी घटना जो हो गई है उसका किसी भी तरह का निगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर ना हो, हम अपने वर्तमान को एंजॉय करें। मान लो कार में हम बैठे हैं, ड्राइविंग भी कोई और कर रहा है, हमारे पास बिल्कुल फ्री टाइम है और हमें आधा घंटा लगाकर एक घंटा लगाकर अपने ऑफिस में जाना है, तो हम बड़ा सुंदर आनंदकारी योग का अभ्यास कर सकते हैं। उसमें हमें लगेगा वाह हमारा ये एक घंटा तो बहुत सुंदर तपस्या हो गई, ये तो हमारा फ्री टाइम था, ये तो हमारा एकांत का समय था। लेकिन ये तब होगा जब किसी भी घटना के इफेक्ट से हम परे रहेंगे। कुछ ना कुछ तो हर एक के साथ रोज हो ही जाता है
जी।
घटना हो गई, टीवी में कुछ देख लिया, कोई समाचार आ गया, न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया, या किसी की कोई चिंता लग गई, बच्चे की बात आ गई, कोई बीमारी हो गई, इन सब के इफेक्ट को तुरंत हल्का कर देना, बस ये कला यदि मनुष्य सीख ले तो फिर वो अपनी दिनचर्या को एंजॉय करेगा।
बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है जी, और शायद इसी से व्यक्ति नहीं उबर पाता। बाहर आने के लिए शायद मुझे लगता है मेडिटेशन की पावर की ही जरूरत है। ये सारी जगहों पे जहाँ जहाँ आपने बताया कि यहाँ यहाँ योग का अभ्यास करें, एक घंटे यदि ट्रैवलिंग कर रहा है तो भी, तो कई बार व्यक्ति के मन में उतने अच्छे विचार नहीं होते हैं। अब वो सोचता है थोड़े से दो चार विचार, जैसे आपने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या मैं महान आत्मा हूँ या भगवान की संतान हूँ, इतना करने के बाद एक पॉज आ जाता है कि अब आगे मैं क्या करूँ, तो फिर आगे ये जो मेडिटेशन है वो कंटिन्यू नहीं रह पाता। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं बनी हुई ऑडियो में हो या कुछ इस प्रकार से गाइडेड मेडिटेशन हो जिससे लोगों को मदद मिल सके?
ये जो चिंतन है, सचमुच तो संसार में इसकी ही बहुत कमी हो गई है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 99.5% लोग अच्छा चिंतन नहीं करते हैं। बिजनेस में हैं तो बिजनेस की चिंता और चिंतन, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की और कई रिलेशनशिप्स की चिंता और चिंतन उन्हें रहती है, घर में हैं तो अनेक संबंधों में जो चिंताएं बनी रहती हैं, व्यवहारिक परेशानी बनी रहती है, उसका चिंतन और उसकी परेशानियां ये मन पर ज्यादा हावी रहती है। दूसरी एक चीज और हो गई, देखिए माइंड हैज गॉट क्रिएटिव एनर्जी, लेकिन हो क्या गया, अब 4 घंटे एक मनुष्य टीवी देख रहा है, फिर 2 घंटे वो नेट पे लगा हुआ है, लैपटॉप पे लगा हुआ है, फिर किसी का मोबाइल आ गया है, फोन आ गया है, अभी 5-7 फोन अटेंड कर लिए हैं उसने, इन सब से क्या हुआ, उसकी अपनी क्रिएटिव एनर्जी नष्ट हुई और जो उसने देखा सुना पढ़ा उससे प्रभावित होकर विचार चलते रहते हैं। ये एक ऐसी दुविधा हो गई है जिसको आजकल बुद्धिमान लोग भी जान नहीं पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा लोस हमारी बुद्धिमान व्यक्तियों को भी हो रहा है, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे जो बहुत अच्छे कार्य करने वाले, चिंतन करने वाले, उनको ये बहुत बड़ा लॉस होता जा रहा है कि उनकी ये क्रिएटिव एनर्जी, ये चिंतन शक्ति नष्ट हो रही है, क्योंकि सारा दिन वो दूसरी चीजों के प्रभाव में जीवन जीते हैं। इससे मुक्त होने के लिए रोज ईश्वरीय महावाक्यों का सुंदर अध्ययन, आधा घंटा अपने को देकर सुंदर चिंतन, इन सब की बहुत आवश्यकता है। इन्हें हम अव्यक्त महावाक्य कहते हैं, जो भगवान के द्वारा उच्चारण किए गए, उनका 15 मिनट अध्ययन करके फिर दिनचर्या प्रारंभ करें, वो मन पर छाया रहेगा। और ये जो विजुअल चीजें आ गई है ना, जो मन को ज्यादा प्रभावित कर रही, इनसे अपना थोड़ा डिटैच हो, थोड़ा सा अपने को अलग करें। ठीक है, देखना जरूरी भी है, लेकिन इतना नहीं कि चिंतन पर वो हावी हो जाएं, तो मनुष्य बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है।
कई बार कहते जी चलिए चिंतन वो करें, चिंतन को बढ़ाए, आपने कहा बहुत कम हो गया है, ये चीज बढ़ाई जाए। कई बार होता है कि हमारे पास वक्त भी है और हम मेडिटेशन करना भी चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन उसमें मन नहीं लगता। तो ये जो मन नहीं लगने वाली स्थिति है, तो ज्यादातर लोगों के साथ फिर ऐसा होता है कि अरे यार मन तो लग नहीं रहा है और कहीं कहीं जा रहा है, उससे अच्छा चलो कोई फिल्मी सॉन्ग सुन लेते हैं या और कोई दूसरी चीज, गैजेट्स हैं लोगों के पास, अब कुछ प्ले कर लेते हैं, खेल लेते हैं, यहाँ चला जाता है। तो ये वाली जो स्थिति है कि मन नहीं लग रहा है, उसमें आनंद नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है, ये कैसे आए, ये भी बड़ा प्रश्न है।
ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्या कहें, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आज होती जा रही है। अनेक मनुष्यों के मन पर दिन में कई बार बाह्य वाइब्रेशंस का गहरा इफेक्ट पड़ता है
जी।
इसको लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर बहुत बैड एनर्जी है। हमसे जो कंसर्न लोग हैं, मान लो हमसे 10-15 लोग जुड़े हुए हैं, गहराई से जुड़े हुए हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, उनके वाइब्रेशंस का प्रभाव हमारे मन पे अचानक आ जाता है और वो हमारे मन की दिशा को डाइवर्ट करने लगता है। ये बहुतों के साथ हो रहा है। मन एक ही चीज में सदा नहीं लगता है। एक विद्यार्थी है, उसको स्टडी के प्रति अरुचि होगी बीच बीच में, कभी मन नहीं करेगा पढ़ने का, कभी एकाग्रता नहीं होगी, तो फिर वो डेफिनेटली इधर उधर देखेगा, भाई चलो कुछ खेल लो, और नहीं तो चलो वीडियो गेम, मोबाइल में बहुत सारे गेम्स आते हैं उनमें चलो नेट खोलो, कुछ करो इधर उधर। फिर उसे ये भूल जाता है कि इससे उसकी शक्तियाँ नष्ट होती हैं, इससे उसके माइंड बहुत डाइवर्ट होता है। और बड़ी चीज़ होती है, एक बार विद्यार्थी उसमें लग जाता है, फिर लगा ही रहता है लंबा काल, तो उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये जो बाह्य चीज़ों के इफेक्ट हैं, कुछ प्रकृति की ओर से इफेक्ट हो रहे हैं, कुछ अपने अंदर के ही इफेक्ट बहुत बुरे हो रहे हैं। मनुष्य के अंदर जो वासनाएं बढ़ गई हैं, जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड से बैड एनर्जी बहुत आ रही है आजकल हमें ब्रेन को आ रही है, तो वो हमारे ब्रेन की स्थिति को प्रभावित करती रहती है। तो अपने ही अंदर से निकलने वाली निगेटिविटी, बाहर से निगेटिविटी का इफेक्ट, प्रकृति का इफेक्ट, हम अपना ही जो कुछ कर रहे हैं या किसी से हमारा गलत व्यवहार हो गया था कल, उसका इफेक्ट। कई बच्चे इतने सेंसिटिव हैं कि एक घटना हो गई तो कई दिन तक उसके इफेक्ट में रहते हैं। ये सब चीज़ें मनुष्य के मन की दिशा को बदलती रहती हैं। फिर उसका मेडिटेशन करने को मन नहीं करेगा, ये सत्य बात है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनती रहती हैं मनुष्य के मन में। इसके लिए निरंतर साधना के पथ पर हमें अग्रसर रहना पड़ेगा।
मतलब मन लगे न लगे, हाँ, लगाना पड़ेगा।
कुछ प्रैक्टिस फिक्स करनी पड़ेगी, सवेरे उठ के कुछ अच्छा करना पड़ेगा ताकि मन आनंदित रहे। फिर भी हमें इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि मन पर भिन्न भिन्न चीजों का इफेक्ट संभव है, उसको भी हमें फेस करना है, उसको पार करना है। चाहे उस स्थान को हम बदलें, चाहे थोड़ी कुछ अलग स्टडी करें, कुछ स्थान को बदल कर स्टडी अच्छी करके अपने मन के वाइब्रेशंस को यदि हम बदलेंगे तो हमारा इंटरेस्ट उन चीजों में कायम रहेगा। और अगर एक बार मेडिटेशन में मन लग गया तो फिर ये लगा ही रहता है। फिर कोई छोटी मोटी चीज जब सामने आती है तो मेडिटेशन की शक्ति से मनुष्य उनको पार कर लेता है।
टेस्ट वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए मुझे एक मास लग गया, छह मास लग गया, एक साल लग गया, अब भी टेस्ट नहीं आ रहा है, तो
ये टेस्ट तब आता है जब मनुष्य का चित्त एकाग्र होता है। अगर वो बहुत जल्दी मन को एकाग्र कर ले, 3 मिनट भी उसकी एकाग्रता अच्छी हो जाए तो उसे जो आनंद मिलेगा। और इसमें मैं तो ये राय दूंगा कि 5-5 मिनट ही सही, 5-7 बार योग अभ्यास करना चाहिए। तो 2-4 दिन में ही इस कंटिन्यूएशन के साथ मन पर अच्छा इफेक्ट होगा, मन करने लगेगा साधना करने के लिए।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, बहुत सुंदर अभ्यास और साथ ही बहुत अच्छी प्रेरणा आपने हमारे सभी भाई बहनों को दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में योग या तपस्या एक ऐसा विषय है जिसे टेस्टी बनाने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे हमें टेस्टी फूड बहुत अच्छे लगते हैं, आजकल फास्ट फूड बहुत प्रचलित है, वैसे तो शरीर के लिए वो नुकसानदेह है लेकिन टेस्टी है तो लोग खाते हैं। तपस्या वास्तव में शरीर के लिए, आत्मा के लिए बहुत फायदेमंद है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसे टेस्टी बनाने की जरूरत है मुझे ऐसा लगता है, ताकि हमारा मन लगे। और भ्राता जी ने आज 1-2 टिप्स हमें दिए हैं, लेकिन हम और भी जानना चाहेंगे इनसे कि कैसे इसे हम टेस्टी भी बनाएं, कैसे हमारी एकाग्रता बढ़े, क्योंकि एकाग्र भी हम नहीं हो पाते। एक बार हम लगाते हैं मन और तुरंत मन कहीं और चला जाता है, ये भी एक मूल प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन दोनों बातों को लेके भी हम आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसपे प्रकाश की सचमुच आवश्यकता है। क्योंकि एक बात मैं हमेशा से शायद आप लोगों को कहता रहा हूँ कि मेडिटेशन हमारी टीम को बहुत स्ट्रांग कर देता है। टीम हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे एटीट्यूड एंड हमारी मेमोरी। तो जो चीज़ हमारी थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड, मेमोरी सबको शार्प कर रही है, विकसित कर रही है, इन्हीं की तो हमें आवश्यकता है ना। और यदि हम योग करें, साधना करें, तो इन सब चीजों में निखार आता है, व्यक्तित्व निखरता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ ताकि हम व्यक्तित्व को और निखारें और तपस्या की गहराई में चलें। नमस्कार।